13 जून दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। अमेरिका में पुलिस ने कल हुई गोलीबारी के और विवरण जारी किए।
I made the decision to commence the rescue operation and do the explosive breach. The explosive breach did not penetrate.
चर्चा होगी क्या भारत में कभी समान नागरिक संहिता लागू हो पाएगी।
प्रोविजंस उन कानून के जो आप बनाएंगे, आप बनाइए, हिंदुओं के लिए बनाइए, मुसलमानों के लिए बनाइए, लेकिन जो नए प्रोविजन आप बनाएं उसमें जहां तक मुमकिन हो यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत होनी चाहिए।
बताएंगे जिम्बाब्वे पर भारत की सीरीज की जीत की कहानी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। अमेरिका में ऑरलैंडो पुलिस का कहना है कि शहर में कल एक नाइट क्लब में गोलीबारी कर 50 लोगों को मारने वाले उमर मतीन ने जब नाइट क्लब के अंदर से पुलिस से फ़ोन पर बात की थी तो वो शांत स्वभाव के लग रहे थे। पुलिस के अनुसार मारे गए 48 लोगों की पहचान कर ली गई है। ऑरलैंडो के पुलिस प्रमुख जॉन मीना ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के क्लब के अंदर घुसने के बाद कई लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि क्लब की दीवार में सुराख करने के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। दर्जनों लोग दीवार में बने उस सुराख से बाहर निकलने में कामयाब हुए। उमर मतीन भी उसी सुराख से बाहर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मार दिया। हमलावर उमर मतीन के पिता का कहना है कि उन्हें इस बात से सदमे में हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी। उमर मतीन अफगान मूल के अमरीकी नागरिक थे। हमले के बाद उनके पिता मीर सिद्दीक ने एक वीडियो बयान जारी किया है। दरी भाषा में जारी किए गए बयान में उमर मतीन के पिता का कहना था, अफगानिस्तान की बहादुर जनता, मैं आपको अपने बेटे की मौत की खबर देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, जिसकी एक पत्नी और एक बच्चे थे और जो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था। मुझे नहीं पता कि वो किन लोगों के साथ रहने लगा जिन्होंने उसे एक बंदूक दे दी। मुझे कभी नहीं पता चला कि उसके दिल में इतनी नफरत थी कि उसने गे क्लब में जाकर लगभग 50 मर्द और औरतों को मार दिया। उसने रमज़ान के पवित्र महीने में ऐसा क्यों किया? समलैंगिकता के लिए भगवान सजा देगा, यह इंसानों का काम नहीं है। उसने जो किया उसका मुझ पर बहुत असर हुआ है। उमर मतीन के पिता के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करना होगा। ट्रंप ने एक समाचार चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि अमरीका में अभी ऐसे हजारों लोग हैं जो इस तरह की नफरत से भरे हुए हैं और इसी तरह की कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम हैं। ट्रंप पर नाइट क्लब में हुई गोलीबारी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। फिलीपींस में सक्रिय चरमपंथी संगठन अबू सयाफ ने महीनों से बंधक बनाकर रखे गए कनाडाई नागरिक रॉबर्ट हॉल की हत्या कर दी है। वो पिछले साल सितंबर से इस संगठन के कब्जे में थे। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने रॉबर्ट हॉल की हत्या की पुष्टि कर दी है। अबू सयाफ ने लाखों डॉलर फिरौती की रकम मांगी थी, जिसके नहीं मिलने पर हत्या की चेतावनी दी थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं अमरीका से। अमरीकी पुलिस ने कल हुई गोलीबारी की घटना का और विवरण दिया है। पुलिस का कहना है कि हत्यारा, जिसने 49 लोगों को मार डाला, अंतिम समय तक शांत दिखाई दे रहा था। मारे गए 49 लोगों में से 48 को पहचान लिया गया है। पुलिस के पल्स नाइट क्लब में घुसने की वजह से बहुत से लोगों की जान बच पाई। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने क्लब में घुसने के लिए एक आर्मर्ड व्हीकल को दीवार से टकराकर उसे तोड़ डाला। ऑरलैंडो के पुलिस प्रमुख जॉन मीना ने कहा,
I made the decision to commence the rescue operation and do the explosive breach.
मैंने बचाव ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया। विस्फोटकों ने दीवार को पूरी तरह से नहीं भेदा। हमने अपनी आर्मर्ड व्हीकल को उसकी दीवार से टकराकर उसमें छेद किया। اس چھید سے ہو کر درجنوں لوگ بچ نکلے، اورلینڈو کے پولیس پرمکھ جان مینا کے شبد۔ آئیے سیدھے چلتے ہیں برجیش اپادھیائے کے پاس، واشنگٹن ڈی سی۔ برجیش، بتائیے پولیس کے سنواددتا سمیلن میں کیا کہا گیا ہے اس گھٹنا کے بارے میں؟
دیکھیں، ایف بی آئی کے انوسار یہ جو چھان بین ہے ابھی بالکل شروعاتی دور میں ہے۔ وہ پولیس کی جو تمام ایجنسیاں ہیں وہاں ستھانیہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھاری تعداد میں الیکٹرانکس اور دوسرے ثبوت ضبط کیے ہیں، اور انہیں 100 کے قریب لیڈز ملی ہیں اور ان پر کام چل رہا ہے۔ فی الحال دھیان اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ عمر متین نے اکیلے دم پر اس حملے کو انجام دیا تھا، یا پھر خود کو جو اسلامک اسٹیٹ کہنے والا سنگٹھن ہے اس کے ساتھ ان کا سیدھا سمپرک تھا، یا ان کے کہنے پر انہوں نے کیا تھا۔ اور فی الحال ان کا کہنا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے یہ یقین کرنے کی کہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ اس حملے میں شامل تھا۔ حملے کے دوران ہی انہوں نے 911 جو یہاں کی ایمرجنسی سیوا ہے اس کو کال کر کے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کا اظہار بھی کیا تھا۔ ایف بی آئی 2013 اور 2014 میں ان کے چرم پنتھیوں کے ساتھ سمبندھ کے شک میں ان سے پوچھ تاچھ بھی کر چکی تھی، لیکن پوری طرح سے کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل پانے کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ ابھی بھی وہ ایف بی آئی کی واچ لسٹ پر تھے یا نہیں، اور ایف بی آئی نے اپیل جاری کی ہے کہ کوئی بھی جو عمر متین کو قریب سے جانتا ہو یا ان کے بارے میں کوئی جانکاری رکھتا ہو وہ سامنے آئے۔ اور ان کے پتا نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک چھوٹا سا پریس کانفرنس بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک پرتیشت بھی اس کا اندازہ ہوتا کہ وہ اس طرح کے حملے کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے اندر اس طرح کی سوچ حاوی ہو رہی ہے، تو وہ خود ایف بی آئی کو خبر کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے پریوار کا زندگی بھر ہم نے کسی بھی طرح کے آتنکواد کو سمرتھن نہیں دیا ہے۔
برجیش، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس گھٹنا کو امریکہ میں راجنیتک روپ سے بھنایا جا رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی دیکھیں، ابھی راشٹرپتی چناؤ کا جو ابھیان ہے اپنے پورے چرم پر ہے، اور اس پر راجنیتی کافی تیز ہو چکی ہے۔ حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں ہی امیدواروں نے کل اس پر ٹویٹ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور آج اس معاملے پر ایک بھاشن بھی دینے جا رہے ہیں، اور آج صبح امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوباما ہو یا کلنٹن، پہلے تو وہ اسلامی جہاد لفظ کا ہی نہیں استعمال کرتے، اور ان کا کہنا تھا کہ مسلمان قوم کے اندر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان سماج ان کے بارے میں رپورٹ نہیں کرتا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ سیریا سے آنے والے ریفیوجیز کو بالکل روک دینا چاہیے، مسجدوں اور لوگوں پر نگرانی بڑھائی جانی چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں حالات اور بدتر ہوں گے۔ وہیں ہلری کلنٹن نے بندوقوں پر لگام کسنے کی مہم تیز کرنے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ پورے مذہب یعنی اسلام پر نشانہ لگاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے آئسس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملوں کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آن لائن نگرانی ہے اسے تیز کیا جائے، اور ایک اگر وہ راشٹرپتی بنتی ہیں تو ایک الگ ٹیم بنائیں گی جو اس طرح کے لون وولف اٹیکس جن کو کہا جاتا ہے ان پر روک لگایا جا سکے۔
بہت بہت دھنیواد آپ کا برجیش اپادھیائے۔
دن بھر شارٹ ویو 41، 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 7,565, 9,460, 9,510 اور 11,795 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارتی جنتا پارٹی کی دو دن کی راشٹریہ کارکارنی کے بعد پردھان منتری نریندر مودی نے الہ آباد میں ایک بڑی ریلی کو سمبودھت کیا ہے۔ راج میں آگامی چناؤ کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے پرچار کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بھائی بھتیجاواد اور بھرشٹاچار سے ندان پانے کے لیے پورن بہمت سے بھارتی جنتا پارٹی کو ستا میں لانا ہوگا۔ وہیں پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش امت شاہ نے متھرا میں پولیس کرمیوں کے مارے جانے اور شاملی سے ہندو پریواروں کے کتھت پلائن کے مدوں کو اٹھایا۔ پوری جانکاری کے ساتھ دیویا آرے۔
بھارت ماتا کی
مودی 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 اور بھارت ماتا کی جے کے نعروں کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے الہ آباد میں پردھان منتری مودی کا منچ پر سواگت کیا۔ समर्थकों की तादाद और मंच पर बैठे गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से यह जाहिर था कि इस रैली का मकसद राज्य में चुनाव प्रचार की जोरदार शुरुआत करना था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका देना होगा।
2 साल तक हम काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, लेकिन वो सफाई की धूल इतनी उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी कि हमारी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती थी। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान, जितने भी सर्वे हुए, सारे मीडिया वालों ने सर्वे किए, सब सर्वे में मेरे देशवासियों ने मुझे फर्स्ट क्लास से पास कर दिया, फर्स्ट क्लास से पास कर दिया।
खासतौर पर नौजवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने बार बार विकास की बात की। उन्होंने समर्थन ही नहीं, पूर्ण बहुमत भी मांगा और कहा कि ये स्थिर सरकार के लिए बहुत जरूरी है। केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। अपने विदेश दौरों के लिए कई बार आलोचना पाने के जवाब में उन्होंने बात को उलट कर कहा,
मोदी जी स्विट्जरलैंड गए थे, ये हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी दुनिया में भारत 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 हो रहा है, वो आप लोगों के कारण हो रहा है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है मेरे भाई।
वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बोले और उन सभी मुद्दों पर ध्यान खींचा जिनका मोदी ने अपने भाषण में जिक्र तक नहीं किया।
बसपा पार्टी और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चालू हुआ है, इलू इलू।
आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे कड़ी टक्कर बहुजन समाजवादी पार्टी से मिलने की आशंका जताई जा रही है। अमित शाह ने बसपा के कांग्रेस को समर्थन देने पर चुटकी लेने के अलावा मथुरा के प्रकरण के संदर्भ में समाजवादी पार्टी सरकार और गुंडागर्दी की भी बात की, पर उनके संबोधन का प्रमुख बिंदु कुछ और ही था।
केरला का पलायन आग खोलने वाला पलायन है। आप चाहते हैं इस प्रकार के पलायन सारे उत्तर प्रदेश में हो? चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए।
वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद एक प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैठक का मकसद केंद्र सरकार के 2 साल खत्म होने पर बात करना था। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक बार फिर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के बड़े आंकड़ों का हवाला दिया। हालांकि पिछले दिनों में इन आंकड़ों की आलोचना की गई है और कहा गया है कि ये असल विकास नहीं बल्कि आंकड़े मापने की अलग पद्धति की वजह से दिख रही बढ़त है। दिव्या आर, BBC दिल्ली।
समान नागरिकता के कानून के लिए समाज में बहस लगातार जारी है। इसकी वकालत करने वालों का कहना है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के क्यों न हो। ये बहस इसलिए है क्योंकि इस तरह के कानून के अभाव में महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती ही जा रही है। हालांकि सरकारें इस तरह का कानून बनाने की हिमायत तो करती रही हैं, मगर राजनीतिक मजबूरियों की वजह से किसी सरकार ने इसे लागू करने के लिए कभी कोई ठोस पहल नहीं की है। राजनीतिक दलों को डर है कि कहीं इस तरह के कानून को लागू करने से उनका आधार खत्म न हो जाए। अलग अलग समाज के अलग अलग तौर तरीके हैं जिसके तहत उनके शादी ब्याह के रस्म रिवाज जुड़े हैं। उत्तराधिकार के मामले में भी सामाजिक रिवाजों का ही बड़ा योगदान रहा है। तो क्या भारत में कभी समान नागरिक संहिता संभव हो पाएगी? यही जानने की कोशिश की है BBC संवाददाता सलमान रावी ने।
हाल ही में भारत की सर्वोच्च अदालत ने समान नागरिक संहिता को लेकर दायर की गई एक याचिका खारिज करते हुए ये कहा कि इस सवाल पर संसद को ही निर्णय लेना है। दरअसल रह रहकर इस तरह की याचिकाएं अदालत में दायर होती रही हैं क्योंकि ज्यादातर समाजों के लिए बनाए गए कानून उनके धर्म के रीति रिवाजों पर आधारित हैं। हालांकि हिंदू कोड बिल में सिख, बौद्ध और जैन समाज को रखा गया है, जबकि मुसलमानों के लिए शरीयत पर आधारित कानून ही लागू रहा। हिंदू कानून में बदलाव आते रहे मगर मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं की जा सकी। मगर मुस्लिम समाज में ही इस मुद्दे पर खासी बहस चल रही है, क्योंकि समाज की महिलाओं और बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस कानून में लिंग भेद है। विधि आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके ताहिर महमूद कहते हैं कि इस मुद्दे पर बहस तो जोर शोर से होती रही है, मगर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है।
प्रोविजंस उन कानून के जो आप बनाइए हिंदुओं के लिए बनाइए, मुसलमानों के लिए बनाइए, क्रिश्चियंस के लिए बनाइए, जो बने हुए कानून हैं उनमें जो खराबियां हैं उनको रिफॉर्म कीजिए, लेकिन जो नए प्रोविजन आप बनाएं, नए कानून हो या किसी कानून को रिफॉर्म करके अमेंड करके नया प्रोविजन बनाएं, उसमें जहां तक मुमकिन हो यूनिफॉर्मिटी यकसानियत होनी चाहिए। तो अगर 1500 बरस पहले बने हुए कानून में या 2000 बरस पहले बने क्रिश्चियन लॉ में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें क्या ताज्जुब की बात है भाई, डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, हर कानून में है। ड्राफ्ट बताइए, दिखाइए, आप ड्राफ्ट कीजिए, दीजिए लोगों को तो, और फिर इनवाइट कीजिए लोगों को, क्या बताइए आपको क्या ऑब्जेक्शन है। हिंदुओं को एक्सेप्टेबल नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक संदीप महापात्रा कहते हैं कि सवाल समाज में महिलाओं के अधिकार का है, इसलिए जिस तरह भारतीय दंड संहिता और CRPC सब पर लागू है, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए जो सबके लिए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।
निश्चित रूप से कई एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वो चाहे लॉ कमीशन के माध्यम से कोई ड्राफ्ट है, जैसे लॉ कमीशन है बहुत सारे रिपोर्ट्स देती हैं, बहुत सारे सजेशंस देती हैं। हमने ये देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में लॉ कमीशन्स ने कुछ ऐसे लॉज जो कि मान लीजिए आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, उसमें कुछ सजेशंस दिए, वो इनकॉर्पोरेट हुआ, वो इनैक्ट भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए और एक बड़ी सोच होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ चेंजेस आए, किस तरह के चेंज आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में गोवा भी एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
हिंदू महासभा के मुन्ना शर्मा कहते हैं कि हिंदुओं में शादी जन्मों का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, साथ ही सम्मिलित हिंदू परिवार की जो कल्पना है वो इस समाज की संस्कृति का हिस्सा भी है, मगर अब आधुनिक युग में महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद कर सकें।
देखिए, हिंदू कोल बिड में इनहेरिटेंस के कुछ कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा। पहले तो स्थिति ज़्यादा खराब थी महिलाओं की, लेकिन सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास हुए और कुछ वर्षों में कई कानून आए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा हुआ, दूसरा कानून आया कि बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार दिए गए। तो इसमें हमारा मानना है कि महिलाओं को भी पिता की प्रॉपर्टी और पति की प्रॉपर्टी में महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए।
अखिल भारतीय ईसाई परिषद के महासचिव जॉन दयाल का कहना है कि ईसाइयों में भी दो अलग पंथ हैं, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक समाज में तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है, वहीं प्रोटेस्टेंट्स में तलाक जायज है।
ईसाई भी एक समुदाय नहीं है, डिनोमिनेशनली कैथोलिक्स जो कि मैं खुद कैथोलिक हूँ, हमारे यहाँ डिवोर्स मान्य नहीं है, शादी सेक्रमेंट है, जन्म जन्मांतर तक आप फंस गए इसमें। प्रोटेस्टेंट्स में डिवोर्स है, कैथोलिक्स में अगर आपको अपनी बीवी से अलग होना है तो मैरिज को डिसॉल्व करना पड़ेगा कि जैसे कभी शादी हुई ना हो, क्योंकि प्रोसेस रिलीजियस है, उसको बिशप हाउस में जो जुडिशियल विकार है तो उसमें बिशप कह सकते हैं कि शादी हुई नहीं। प्रोटेस्टेंट्स में सिविल डिवोर्स है और उसकी मान्यता भी है।
दूसरी तरफ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के राणा परमजीत सिंह के विचार इस मुद्दे पर थोड़े अलग हैं। वो कहते हैं कि उनके समाज को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अधीन रखा गया है, जबकि सिख धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है।
हम उसकी मांग लंबे समय से कर रहे हैं कि हम एक अलग हमारी कौम है, हमें उनके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने जनेऊ नहीं पहना, तो अभी तक हमारे को वही धारा 25 के चक्कर में हम लगे हुए हैं कि वो हट जाए और हमारा एक इंडिपेंडेंट धर्म माना जाए। पर अभी भी जो हमारे कोर्ट्स में केस चलते हैं वो हिंदू धर्म के एक्ट में चल रहे हैं, जिसकी हमारी डिमांड लगातार पार्लियामेंट में भी है। अभी उससे तो हमें छुटकारा मिला नहीं, एक और ऊपर से लग गया हमारे ऊपर सेशन। सो लेट्स टॉक, इसको डिस्कशन का एक मुद्दा।
महिलाओं के समान अधिकारों और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए 1993 में कानून में संशोधन किया गया, मगर मुस्लिम तंजीमों ने घोषणा की कि वो शरीयत के अनुसार ही अपने मामले तय करेंगे, मगर समाज की महिलाओं को लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लिंग भेद करता है, इसलिए वो चाहती हैं कि इस कानून की समीक्षा की जाए ताकि समाज की महिलाओं को हर मामले में बराबरी का हिस्सा मिल सके। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
सरकार का पक्ष जानने के लिए सलमान रावी ने ही अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से संपर्क कर उनकी राय जानी।
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں جو مہیلائیں ہیں انہوں نے مسلم مہیلائیں انہوں نے یہ بات کہی ہے اس لیے جو سماج میں جو ریفارم ہے اس کے لیے جو ہے وہ بحث کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ڈنڈے کے تحت جو ہے وہ کوئی قانون لاگو کر دیا جائے. یہ ملک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سمویدھان سے چلتا ہے اس لیے مانگ اٹھتی ہے ریفارم کی ہمیشہ گنجائش بنی رہتی ہے لیکن اس کے لیے سماج کو تیار ہونے کی ضرورت ہے.
اس میں تو بہت سارے مردوں کا بھی پٹیشن میں سگنیچر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی کا موڈ ہے کہ یہ چینج ہونا.
ہم نے ریفارم کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں اور اگر سماج تیار ہوتا ہے تو پھر اس دشا میں آدمی تو سوچ سکتا ہے. جب اگر سماج کی پہلے سب سے پہلے اس کے لیے سماج کو تیار ہونے کی ضرورت.
لیکن نقوی صاحب کیا ایک یونیفارمیٹی آنی چاہیے کیا سوسائٹی میں تاکہ خاص طور سے انٹرسٹ جو ہے عورتوں کا, عورتوں کے انٹرسٹ کو جو ہے ان کا انہیریٹنس ان کا مینٹیننس,
یہ بھی ایک بحث کا مدعا ہے. ابھی سے کوئی میں ٹپڑی کروں ٹھیک نہیں ہے.
یہ تھے الپسنکھیک معاملوں کے راج منتری مختار عباس نقوی. آج سوموار ہے اور آج کے دن آپ انتظار کرتے ہیں اپنے پتروں کا. آپ کے پتروں کے ساتھ ہیں سواتی بخشی اور راجیش جوشی.
آپ کی رائے. نمسکار, سویکار کیجیے راجیش جوشی کا.
اور میں ہوں سواتی بخشی.
سواتی بخشی میرے ساتھ ہیں, ان کے پاس بہت ساری چٹھیاں ہیں. ایک انتردیشی لفافہ نیلے رنگ کا ہے اور کئی اور لفافے ہیں,
اور یہ سب سے خوبصورت چٹھی ہے.
جی, ایک چھوٹی سی چٹھی ہے, ایک کاغذ میں کسی نے لکھ کے بھیجا ہے.
بیکانیر سے یہ چٹھی آئی ہے.
اپنے دل کا حال.
محمد علی ان کا نام ہے, گلی نمبر 13 رامپورا بیکانیر سے انہوں نے لکھا ہے.
محمد علی ان کا نام ہے.
جی ہاں.
اور چٹھی کس کے بارے میں ہے؟
چٹھی بھی محمد علی کے ہی بارے میں ہے.
یہ وہ محمد علی ہیں جو مہان مکے باز تھے جن کی ابھی مرتی ہوئی ہے.
جی ہاں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی مہانتم تھے اور انہیں نوبیل پرائز نہ ملنا دنیا کی تنگ دلی اور تنگ سوچ کو درشاتا ہے. لیکن انہوں نے بی بی سی کی تعریف کی ہے کہ آپ نے بہت ہی ایمانداری بھرے شبدوں میں اور سندر شبدوں میں گہری بھاوناؤں کے ساتھ شردھانجلی پرستت کی.
جی محمد علی صاحب, بہت بہت دھنیواد آپ کا.
اور جیٹھا رام پوار جو کہ ہمیشہ چٹھی لکھتے ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کلا ورگ کے چھاتروں اور چھاتراؤں کو ایک سجھاؤ دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سرکاری اسکول سے 12ویں پاس کی ہے اور ایک ایسے اسکول سے جہاں پورا اسٹاف بھی نہیں ہے, پھر بھی راجنیتک وشے میں ان کے 100 میں سے 90 نمبر اور اتہاس میں 100 میں سے 91 نمبر آئے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بی بی سی سننا چاہیے.
بھائی جیٹھارام پوار صاحب, یہ تو کمال ہو گیا, بہت ہی ادبھت بات ہے. اور ہمارے جتنے نوجوان شروتا ہیں اسکول جانے والے یا پرتیوگی پریکشاؤں میں حصہ لینے والے, ان کو کافی پریرنا ملے گی آپ کی اس چٹھی سے, ایسا مجھے وشواس ہے. بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے بی بی سی کو, اپنی محنت کا شرے بی بی سی کو آپ دے رہے ہیں.
تو تعریف کی مٹھاس تو ہو گئی, لیکن آپ دوائی کے لیے
نہیں, لیکن آلوچنا کو بھی میں مٹھاس کے طور پہ ہی لیتا ہوں, یہ آپ جانتی ہیں.
ایچ ایم تیواری کا یہ خط ہے, انہوں نے وارانسی سے لکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بی بی سی انڈیا جو ہے وہ بھاجپا کا ویرودھی سینٹر بن کر رہ گیا ہے. تبھی آپ مودی جی کے ویرودھ میں, تبھی تو مودی جی کے ویرودھی کالر ایوم دہائی بھی نہ چھو سکنے والی پارٹی کو ہی بولنے کا موقع آپ دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امت بروا جی سے پہلے تک آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ جو راجنیتک بے باکی اس میں سننے کو ملتی تھی وہ اب سنائی نہیں.
جی ایچ ایم تیواری صاحب, اس کارکرم کا مزاج الگ تھا, اس کا فارمیٹ الگ تھا. اس میں ایک نیتا یا منتری ہمارے کارکرم میں شامل ہوتے تھے اور شروتا ان سے سوال پوچھتے تھے. رہی بات انڈیا بول کی, تو انڈیا بول میں کون سے شروتا آئیں گے اس پر ہمارا کوئی وش نہیں ہے. آپ لوگ فون کرتے ہیں اور اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں, اس میں ہم بالکل فلٹر نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھارتی جنتا پارٹی یا نریندر مودی کا پکشدھر ہے یا ان کا ویرودھی ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. جو شروتا فون کرتے ہیں ان کی بات ویسی کی ویسی ہی آپ کے سامنے آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سہیوگ بنائے رکھیں گے.
اور ملی جلی پرتکریا والا ایک ای میل ہے آدتیہ ترپاٹھی کا بستی اتر پردیش سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی جو ہے وہ ہمیشہ سے عام آدمی کی آواز کو ترجیح دیتا ہے, لیکن شکایت انہوں نے بھی کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کوئی مہینہ نہیں بیتتا جب امر سنگھ جیسے لوگ جنہیں دیش کے اتہاس بھوگول راجنیتی کی کوئی سمجھ نہیں ہے, ایسے لوگ آپ کے ریڈیو ویب سائٹ پر زبردستی تھوپے جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں
صاحب, یہ آپ کی رائے ہے لیکن آپ کی رائے تو ہمارے سرماتھے ہمیشہ رہے گی. پر امر سنگھ راجیہ سبھا کے صدر سے چنے گئے ہیں تو ظاہر ہے ان پر خبر بنے گی. اگر وہ کچھ بات کرتے ہیں, وواداسپد بیان دیتے ہیں, تو ہم ان سے ایک جیسے دوسرے راجنیتاؤں سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے امر سنگھ سے بھی بات کرتے ہیں.
منڈو کمار کا موتیہاری بہار سے ای میل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں पिछले 2 साल से नियमित बीबीसी सुनता हूं और कह सकता हूं कि बीबीसी हिंदी के श्रोता वर्ग में ज्यादातर बिहार से लोग हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीबीसी इंडिया बोल बिहार पर केंद्रित हो या कोई विशेष सीरीज बिहार पर हो?
जहां खबर होती है वहां हम जाते हैं, सिर्फ स्थान विशेष के बारे में क्या कहा जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। फिर झारखंड के बारे में क्यों ना कहा जाए, फिर छत्तीसगढ़ के बारे में क्यों ना बात की जाए, या जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु या पंजाब के बारे में क्यों ना की जाए। खास तौर पर बिहार पर फोकस्ड कार्यक्रम हो भविष्य में, हो सकता है ऐसा हो भी।
राजीव झा ने एक लाइन का ईमेल लिखा और पूछा है कि बीबीसी हिंदी न्यूज सर्विस मोबाइल फोन पर लाइव कैसे सुन सकते हैं?
भाई इसका बहुत सीधा सा तरीका है, आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पे जाइए अपने मोबाइल फोन में और पूरी वेबसाइट को नीचे तक गौर से देखिए, वहाँ नीचे रेडियो के चारों कार्यक्रम हैं, उनमें क्लिक कीजिए, आपको 3 दिन पुराने कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। और जब लाइव होता है हमारा कार्यक्रम रेडियो पर, तब तो आप लाइव अपने मोबाइल फोन पे अपने कंप्यूटर पे सुन ही सकते हैं।
ये ईमेल TKV श्रीनिवासा राव का है, काकीनाडा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से, और इन्होंने तारीफ की है राजेश सिंह का, जो एक इंटरव्यू किया गया था, जो एक दृष्टिहीन पहले IAS ऑफिसर बने हैं। ये कह ये रहे हैं कि 2006 में इनका भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन इन्हें पोस्ट नहीं दी गई थी क्योंकि ये पूरी तरह से दृष्टि बाधित हैं, लेकिन इन्होंने कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। धन्यवाद दिया है कि आपने राजेश सिंह का इंटरव्यू किया।
राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अफसोस की बात है कि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के बावजूद अपनी जगह वहाँ नहीं बना पाए। खैर वो आपका फैसला था, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई थोड़ा हट के काम करता है, कुछ उपलब्धि हासिल करता है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि अपने कार्यक्रम में जगह दें। बहुत सारी चिट्ठियां छूट भी गई हैं, माफी उन श्रोताओं से जिनकी चिट्ठियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं।
नमस्कार।
भारत ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर एक दिवसीय सीरीज जीत ली है और उधर चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का सामना बेल्जियम से है। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
भारतीय क्रिकेट टीम ने आज हरारे में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 8 विकेट से बात दी और इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। आज भी टॉस भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। उनके फैसले को सही साबित करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे का पुलिंदा 34.3 ओवर में ही केवल 126 रनों पर बांध दिया। जिम्बाब्वे के वुसी सिमांडा ही कुछ जमकर बल्लेबाजी कर सके और उन्होंने 69 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाए। चामू चिभाबा ने भी 21 रन बनाए। भारत के युजुवेंद्र सिंह चहल ने 25 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा बरिंदर सरन ने 17 रन देकर 2 और धवल कुलकर्णी ने 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद भारत ने जीत के लिए 127 रनों का लक्ष्य KL राहुल के 33 और करुण नायर के 39 रनों के अलावा अंबाती रायडू के नाबाद 41 रनों की मदद से 26.5 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब भले ही जिम्बाब्वे की टीम बेहद मजबूत ना हो लेकिन वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव भारत की जीत को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।
जब आप नई टीम को लेकर जाते हैं, भले ही जिम्बाब्वे की टीम आप कह सकते हैं कि 2 असमान प्रतिद्वंद्वियों के बीच ये मुकाबला था, मगर फिर भी धोनी के लिए ये जीत एक अच्छी यादगार जीत होगी क्योंकि एक टीम को एक सूत्र में पिरोकर नए खिलाड़ियों को बांधकर उनसे अच्छा प्रदर्शन करवाना और उनसे उनका जो बेहतरीन खेल है उसको लेकर सामने आना, ये बहुत बड़ी बात होती है और धोनी इसमें माहिर हैं, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण थी सीरीज, इसमें कोई शक नहीं, और अच्छा किया उन्होंने अपनी टीम के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं।
उधर फ्रांस में खेले जा रहे यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल खेले गए मुकाबलों में पोलैंड ने उत्तरी आयरलैंड को 1-0 और जर्मनी ने यूक्रेन को 2-0 से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया ने टर्की को 1-0 से मात दी। वहीं लंदन में आयोजित की जा रही हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना बेल्जियम से है। भारत ने इससे पहले सबको हैरान करते हुए ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से मात दी और जर्मनी को 3-3 से बराबरी पर रोका था।
और अब चलते चलते नजर दौड़ाते हैं मुख्य समाचारों पर एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में ऑरलैंडो पुलिस का कहना है कि कल शहर में एक नाइट क्लब में गोलीबारी कर 50 लोगों को मारने वाले उमर मतीन ने जब नाइट क्लब के अंदर से पुलिस से फ़ोन पर बात की थी तो वो शांत स्वभाव के लग रहे थे। फिलीपींस में सक्रिय चरमपंथी संगठन अबू सयाफ ने महीनों से बंधक बनाकर रखे गए कनाडाई नागरिक रॉबर्ट हॉल की हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।